ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के चौथा स्कंद आखिरी अध्याय अर्थात 31 अध्याय 29 नंबर श्लोक पाठ करके श्रवण करेंगे। तो प्रातःकालीन सत्र में सभी भक्तवृंद मातृवृंद को हार्दिक स्वागत। आज हम लोग कथा का भाग कथा से कुछ शिक्षा प्राप्त करेंगे श्रवण करके। विदुर उवाच सोयमद्य महाजोगेन भवता करुणात्मना। कितना 28 लिखा आज है? कल हो चुका था, ठीक है, भूल, कोई चिंता नहीं। दोनों आज एक ही श्लोक है, दोनों श्लोक आज इसको पढ़ देता हूँ मैथिवीर। इमाम तु कौसारविनोपवर्णिताम् छत्तान्निशम्माचित वादसत्कथाम्। प्रविद्ध भावो श्रुकलाकुलो मुने दधार मुदना चरणं हृदा हरे। इमं तु कौसारविनोपवर्णिताम् छत्तानि सम्माजितवाद सत्कथाम्। प्रविद्ध भावो श्रुकलाकुलो मुने दधार मुदना चरणं हृदा हरे। इमं तु कौसारविनोपवर्णिताम् छत्तानि सम्माजितवाद सत्कथाम्। प्रविद्ध भावो श्रुकलाकुलो मुने दधार मुदना हृदा चरणं हृदा हरे। तो श्लोक हम लोग पाठ किया, तो 29 नंबर श्लोक हम लोग थोड़ा सा पाठ करके बाकी दोनों श्लोकों पर करेंगे। सो अयम अद्य महाजोगिन भवता करुणात्मना दर्शित तमस पारो जत्रा किंचन गो हरिः। शब्दार्थ पढ़ने की आवश्यकता, क्योंकि यहां श्लोक लिखा नहीं, डायरेक्ट अनुवाद पढ़ लेते हैं, अनुवाद तात्पर्य क्योंकि लिखा नहीं यहां, ठीक। श्री विदुर ने कहा, हे परम जोगी, हे भक्तों में महान, आपने अहैतु की कृपा से मुझे इस अंधकार रूपी संसार से मोक्ष का पथ प्रदर्शित किया है। इस भौतिक संसार से मुक्त पुरुष इस तथा इस पथ पर चलकर इस संसार से भगवान के धाम को वापस जा सकता है। आज है गुरु पूर्णिमा, हाँ, आज देखिए श्लोक गुरु के प्रसंग पर आधारित है। आज गुरु पूर्णिमा है, आज से पूर्णिमा लग चुका है, काल वैष्णव आज विद्या है, काल शुद्धा मतलब शुद्धा है, एक विद्या होती है एक शुद्धा होती है। तो आज विद्या आज मतलब कर्म कांडिलों को आज मानेंगे, जो कर्म एक कर्म मार्गी है एक वैष्णव मार्गी है, वैष्णव लोग काल मनाएंगे गुरु पूर्णिमा को। तो आज भी गुरु पूर्णिमा है, काल भी गुरु पूर्णिमा है, दोनों श्लोक आज देखे गुरु के ऊपर मतलब गुरु प्रसंग के ऊपर आधारित है। श्री विदुर ने कहा, हे परम जोगी, हे भक्तों में महान, आपने ओहितु की कृपा से मुझे इस अंधकार रूपी संसार से मोक्ष का पथ प्रदर्शित किया है। इस भौतिक संसार से मुक्त पुरुष इस पथ पर चलकर इस संसार से भगवान के धाम को वापस जा सकता है। तात्पर्य जिसल प्रभुपद लिखते हैं, यह भौतिक संसार तम या अंधकार कहलाता है, यह भौतिक संसार तम या अंधकार कहलाता है। और यह भौतिक संसार कैसे है, अंधकार जैसे, और आध्यात्मिक जगत प्रकाश कहलाता है। भौतिक जगत अंधेरा है और आध्यात्मिक जगत प्रकाशमान है। वेदों का उपदेश, वेदों का आदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंधकार से निकालकर प्रकाश के साम्राज्य में जाने का प्रयास करना चाहिए। यहां से निकालकर कहां जाना चाहिए, प्रकाश में जाना चाहिए। तो भाई जाए कैसे, प्रभुपाद उसके बाद लिखते हैं, उस प्रकाश के साम्राज्य को जानकारी सर्व सिद्ध व्यक्ति की कृपा से प्राप्त की जा सकती है, गुरु की आवश्यकता है। भाई आप इसमें है अंधकार में है, तो प्रकाश में जाने के लिए क्या आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है। गुरु कैसे है, स्वरूप सिद्ध होना चाहिए, अपने स्वरूप में सिद्ध होना चाहिए। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की कृपा से प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को भौतिक इच्छाओं का परित्याग भी करना होता है, मनुष्य को भौतिक इच्छाओं को परित्याग करना होता है। कोई भौतिक इच्छा रहने पर वो आगे बढ़ ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते, इसलिए भौतिक इच्छा को त्यागना पड़ेगा। और इन इच्छाओं से छुटकारा पाते ही तथा मुक्त पुरुष की संगति पाने से, दो चीज, भौतिक इच्छा को त्यागना और मुक्त पुरुष की संगति, दोनों अगर मिलता रहे, दोनों एक छुटकारा मिल जाए और मुक्त पुरुष का संग प्राप्त होता रहे, आपका भगवत धाम का दरवाजा आपके लिए खुला है, आप सीधा पहुंच जाएंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई कठिन बात नहीं, भगवान प्राप्त है, हम कुछ हमारे में देख कुछ असाधन घुसा हुआ है, कुछ ऐसे भौतिक इच्छा, कामिनी कांचन कीर्ति की जो लालसा, इसको मिटाने के लिए साधना, इससे मुक्त होने के लिए असाधन से, ये असाधन को हटाने के लिए साधना। जो असाधन असाधन बन चुका है, असाधन मेरे अंदर असाधन है, इसको हटाने के लिए साधना की जरूरत है। इसलिए हम लोग नाम जप करते भाई किसी प्रकार से कामना से रहित हो जाए। तो आज मैत्र मुनि पहला स्कंद जो है ये सुत गोस्वामी का वचन है। पहला स्कंद क्या है, सुत गोस्वामी का प्रवचन है। दूसरा स्कंद किसका, सुखदेव गोस्वामी का प्रवचन किया। दूसरा स्कंद आप मैक्सिमम आपको मिलेगा सुखदेव उवाच, सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। तीसरा एवं चौथा स्कंद मैत्र विदुर संवाद, दोनों का प्रवचन। और पांचवा स्कंद और छोटा स्कंद फिर सुखदेव गोस्वामी का प्रवचन। सप्तम स्कंद नारद मुनि का प्रवचन। अष्टम नवम दशम फिर सुखदेव गोस्वामी का प्रवचन। एकादश स्कंद में श्री भगवान उवाच, भगवान कहेंगे। एकादश स्कंद किसका प्रवचन, भगवान उवाच। और द्वादश स्कंद फिर सुत गोस्वामी उसका उपसंहार करेंगे। तो तीसरा चौथा स्कंद जो है मैत्र विदुर संवाद, आज मतलब खत्म होने जा रहे हैं श्लोक। इसका टीका में लिखते हैं, ननु विदुर मैत्र संवाद समाप्त, विदुर मैत्र संवाद अभी समाप्त होने जा रहे हैं। किम जेन कथांतरम प्रस्तोषी, कि अन्य कथा को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, अन्य कथा को कुछ आगे बढ़ा रहे हैं। तो फिर लिख रहे हैं, इमाम इति, इमाम तो है ना, इमाम तो, इमाम से शुरू हो रहा है। इमाम तो, इमाम तो कौसा रविनोपवर्णितम, कौसा रवि किसका, किसका नाम, कौसा रविना मैत्रे ए न उपवर्णितम। मैत्रे ने जो कहा, मैत्रे ने श्री विदुर महाराज जी को जो उपदेश दिया, इमाम तो कौसा रविनोपवर्णितम, मैत्रेय मुनि ने जो कुछ उपदेश दिया किसको, विदुर को, इमाम तु कौसा रविनोपवर्णितम छत्ता निशम, छत्ता को किसको कहते, विदुर जी को, छत्ता कौसा रविनोपवर्णितम छत्ता निशम, विदुर के द्वारा सुना गया। कोई कहेगा कोई सुनेगा तो किसने सुना, विदुर ने सुना। वो कथा कैसे थी, ओजितवाद सत्कथाम, बहुत सुंदर भाव है, देखिए टीका का भाव, ओजितवाद सत्कथाम का श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं, ओजितस्य भगवत वाद महात्म कथनम जस्याम अतएव सतीम श्रोत्रीनाम रागदेश निवारणीम कथा। कथा दो प्रकार की होती है, एक रागदेश रोहित होता है, एक रागदेश से युक्त होने वाली कथा, एक भगवत संबंधी है, एक जागतिक विषय वार्ता है। न मैत्रेय मुनि ने जो कथा कही, जो उपदेश दिया, वो रागदेश रहित वार्ता थी, रागदेश रहित। श्रोत्री नाम रागदेश निवारणीम कथाम, हाँ, रागदेश रहित जो कथा है वो कथा सुनाया किसको, विदुर को। हाँ, तो फिर कौसा रविनोपवर्णितम छत्ता निशम्म अजितवाद सत्कथाम, अजित भगवत वाद महात्मा, अजित वाद सत्कथा मतलब रागदेश निवारणीम वार्ताम, कथा को सुनाया, एक कथा का विशेषण है। अजित वाद सत्कथाम मतलब रागदेश से रहित कथा को सुनाया। इसलिए आज हम लोग कथा सुनते, जहां रागदेश से युक्त होकर कथा सुनेंगे हृदय मलिन हो जाएगा, अगर रागदेश से रहित होकर, मुक्त होकर, रोहित होकर कथा सुनेंगे हृदय भगवान में लग जाएगा। ये कथा हम लोग को मन भगवान में लगता नहीं क्यों, कि रागदेश से कुछ जुड़ा हुआ है कथा है। निशम्म छत्ता, छत्ता निशम्म अजितवाद सत्कथाम। अच्छा, इस प्रकार कथा सुने होगा क्या, प्रविद्ध भावो, प्रविद्ध भाव ने उसका भक्ति बढ़ जाएगा, प्रविद्ध भावो, हाँ, प्रविद्ध भाव क्या लिखे, अश्रु कला कुलो मुने, हाँ, जब भक्ति हृदय में भक्ति प्रकाशित हो जाएगा, हाँ, अश्रु कला कुलो, आंखों में आंसू अपना गिरने लगेगा, उसको नकल के तरफ से करना नहीं, वो अपने आप आंखों से आंसू बहने लगेगा, क्योंकि हृदय निर्मल हो चुका है। प्रविद्ध भाव अश्रु कला कुलो, देख कितना सुंदर संगति बैठाया भाई, कथा सुनिए, कैसे कथा सुनिए, रागदेश रहित होकर कथा सुनना है, उसका ये कर रहा है, उसका फल क्या, न प्रविद्ध भाव, भक्ति की वृद्धि होगी, और भक्ति वृद्धि होने से क्या होगा, हृदय में भक्ति आने से अपना आंखों से आंसू अश्रु कला कुलो। और उसके बाद मुने दधार, मुने दधार, दधा मुने दधार मुद्रा चरणम हृदय हरे, हाँ, हृदय मनसा हरे है चरणम, मुने है चरणम दधार, मुनि का चरण, देखिए जिससे कुछ वस्तु प्राप्त हो उसके हमेशा कृतज्ञता रहना चाहिए, कृतज्ञता सबसे बड़ी चीज है। आज हम लोग का हरिनाम में, हरिनाम लेने पर भी कठोर होते जा रहे हैं, हम हरिनाम ले रहे हैं किंतु मन कठोर होते जा रहे हैं, इसका क्या कारण है, कि हम कृतज्ञता नहीं है, कृतज्ञ नहीं है। गुरु के हर क्षण के, गुरु महाराज ने मुझे जो धन दिया, जो गोलो के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन जो प्रभु मुझे दिया, आज मैं कितना नीच हूं, कितना अधम हो, आज अधम देखकर भी गुरु कृपा करके मुझे ज्ञान दिया, इस पर हमें से कृतज्ञ रहने से आपका भक्ति की वृद्धि होती रहेगी। अगर आप गुरु कृपा को भूल जाएंगे, गुरु की कृतज्ञता को भूल जाएंगे, हृदय कठोर बना रहे, कठोर मतलब आपको ऐश्वर्य प्राप्त होता रहेगा, ऐश्वर्य जो आंखों में आंसू छंद, हृदय में जो ध्यान, राधा कृष्ण नित्य ध्यान, नित्य विहार का दर्शन, ये सब रुक जाएगा। प्रेम का लक्षण है आंखों में आंसू, निरंतर प्रभु का नाम जीभा पर, और हृदय में ध्यान, यह प्रेम का लक्षण। और कठोरता लक्षण की ना, कामिनी कांचन कीर्ति आपको बहुत प्राप्त होता रहेगा। अगर आप इसको मान लेंगे कि यही हरिनाम का यही फल है, तो आप उस वही पे खड़े मन रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें से गुरु कृपा के प्रति ध्यान रखना है कि हम मुझे प्रेम प्राप्त करना है, प्रभु के प्रेम। प्रेम का लक्षण क्या है? ऐसा एक श्लोक बड़ा सुंदर है भागवत में, आखिरी श्लोक में, कि प्रभु का नाम लेने से आंखों में आंसू रुदोते रोते गायते उन्मादवत नित्यते लोक वाह्य। लोक वाह्य को कोई परवाह नहीं, लोग क्या कहेंगे इस पर कोई ध्यान नहीं है। कि एवं व्रत स प्रिय नाम कीर्ता, जब प्रभु के इस प्रकार कीर्तन करने लगेंगे, कीर्तन करेंगे, एवं व्रत स प्रिय नाम कीर्ता जातानुरागा द्रुत चित्त उच्च। जातानुराग मतलब कृष्ण अनुराग हो जाएगा, जातानुराग द्रुत चित्त उच्च रोदति रोएगा, रोदति रोती गायती उन्मादवत नित्य लोक वाई है। उन्मत्त होकर पागल, लोग सोचेगा पागल है, किंतु है प्रेम से पागल, साधारण पागल नहीं। वो उनका हृदय में नित्य विहार का छन छन दर्शन हो रहा है। तो हम लोग को जो जप करना है, हमें से गुरु की कृतज्ञता पर ध्यान रखना चाहिए। गुरु आत्मा में प्रकाश डालने के लिए बीज दिया, ये बीज को प्रकाशित करने के लिए गुरु की कृतज्ञता की बहुत जरूरी है। हम लोग कृतज्ञता भूल जाते हैं, हम लोग मिल गया गुरु, हमारे जो गुरु है वो ऐसे गुरु नहीं है, गुरु और कुछ है, तो आप गए। गुरु का हमेशा भले कुछ भी हो, गुरु सच्चिद आनंद स्वरूप है, ये आपको मान लेना पड़ेगा। गुरु साधारण मल मूत्र पंच भौतिक शरीर नहीं है। गुरु का शरीर कैसे है? सच्चिद आनंद स्वरूप है। हरे चरणम मुने चरणम दधारा, देखिए यहाँ लिखे है, हरि का चरण धारण किया, मुनि का चरण मैत्र मुनि की, मैत्र मुनि का आज इतना प्रशंसा, ये प्रशंसा श्लोक है, स्तुति कर रहे हैं आज मैत्र मुनि की, मैत्र मुनि की स्तुति कर रहे हैं। हे प्रभु मैं कहाँ गिरा हुआ था, आज मुझे कहाँ पोछा दिया। हाँ, नेक्स्ट श्लोक में कि तमस पार, संसार से संसार चक्र से पार पोछे दिए हैं। हे प्रभु आज मुझे प्रभु प्राप्त हो गया, हरि प्राप्त हो गया, श्री हरि प्राप्त हो गया। क्योंकि अगर गुरु के प्रति कृतज्ञता रहेंगे तो गुरु हमेशा आपके साथ रहेंगे। गुरु साक्षात जो स्वयं, जब आप साक्षात्कार करेंगे तो प्रभु गुरुदेव उस समय आपके प्रभु से मिला देंगे। अगर गुरु के प्रति कृतज्ञता नहीं रहेंगे तो गुरु वहां आपको मिलेगा नहीं। इसलिए हर क्षण हर मंत्र में गुरु का छवि होना चाहिए। गुरु साधारण नहीं, जहां जिसको गुरु मंत्र मिला, हाँ गुरु का स्पर्श मिला, हमेशा उस क्षण को याद रखे, कभी भूले ना। भूलने से आप कठोरता को प्राप्त करेंगे, ऐश्वर्य को, ऐश्वर्य मतलब कठोरता, ऐश्वर्य मतलब धन बहुत संपत्ति बहुत रूप कामिनी कीर्ति जस बहुत प्राप्त हो रहा है, माने आप बहुत नीचे जा रहे हैं। आप कभी ना सोचे कि आप प्रेम की रास्ता पे आगे बढ़ रहे हैं, आप नीचे की ओर जा रहे हैं। प्रभु से डरते रहना कि प्रभु आप मुझे क्या दे रहे हैं, ये मुझे प्राप्त, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? हे प्रभु आपका चरण जुगल चाहिए, हे प्रभु आपके आपके लिए हमारे हमेशा हृदय बेकुल रहे। हाँ, निरंतर इसी का स्मरण हो, दधार मूर्धना हाँ चरणम हृदय हरे, हृदय में इसी का ध्यान हो। हाँ, तो सबसे आज मतलब गुरु पूर्णिमा के तिथि के अवसर पर इस बात को मैत्र मुनि के प्रहलाद विदुर जी की शिक्षा से इसको लेना। विदुर जी आज इतना प्रशंसा क्यों कर रहे कि मुझे बहुत धन मिला, गुरु गुरु से जो ज्ञान मिला ये मेरे लिए हमारे लिए बहुत कीमती है। क्योंकि मैत्र मुनि ने कहा दया सर्वभूतया, दया सर्वभूतया, दया सर्वभूतया, हाँ देखिए कितना सुंदर श्लोक है, दया सर्वभूतेषु संतुष्ट जेन केन वा, ये कितना अच्छे अच्छे शब्द सुनाया। तो भाई कुछ खाने पान ना मिले, अच्छा अच्छा शब्द सुनने को मिले, भगवत प्राप्ति में आगे बढ़ने के लिए कुछ कृष्ण कथा सुनने को मिले, तो उससे बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि मुझे बहुत सुंदर सुनाया। भूख प्यास मनुष्य को कष्ट नहीं देते, भूख प्यास कोई बड़ी वस्तु नहीं है, सबसे बड़ी वस्तु है कि मुझे हमेशा निरंतर प्रभु की कथा सुनने को मिले। अगर आपको निरंतर कृष्ण कथा सुनने को मिल जाए, आप भूख प्यास भूल जाएंगे। नैसाति दुस्सह छुन्वम त्यक्त दमप बाधते, हे प्रभु हे सुखदेव गोस्वामी आज मुझे क्षुधा तृष्णा बाधित नहीं कर रहे, क्यों कर नहीं रहे कि आपके मुख से हरि की कथा श्रवण करने को मुझे मिल गया। हाँ, तो इसलिए हमें से प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु आपके भक्तों के मुख से मुझे कथा सुनने को मिल जाए। हाँ, उसी को लिख रहे, सर्वात मना दया सर्वभूतेषु हाँ संतुष्ट जेन केन वा। हाँ, तीन वस्तु को साधन का मार्ग बता रहे, तीन वस्तु चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए, तीन चीज क्या, संतुष्ट होना चाहिए, जो भी वस्तु मिल गया उसी से संतुष्ट रहे, और दया सर्वभूत सभी प्राणियों पर दया करे, संतुष्ट जेन केन वा संतोष रहे, भोजन मिले चाहे ना मिले, कोई गाली दे अपमान करे, वो जो भी कुछ करे, हम लोग थोड़े से कुछ ये हो जाए तो हम लोग असंतोष हो जाते, मान बहुत मान की लालसा है। हाँ, हमें से ध्यान रखे कि प्रभु ही हमारे सब ये व्यवहार कर रहे, मुझे मान मिला ये भी प्रभु की द्वारा दिया हुआ है, अपमान मिला ये भी प्रभु के द्वारा ही दिया हुआ है, हमें से प्रभु की छवि को आगे रखे, जो भी कुछ मुझे प्राप्त हो रहा है प्रभु के द्वारा ही प्राप्त हो रहा है। अगर आप सोच लेंगे देहाभिमान के कारण, ये होता है देहाभिमान के कारण, अगर आप में देहाभिमान चढ़ा हुआ है तो हमेशा आप जलते रहेंगे, कभी आप सुखी नहीं होंगे, हमेशा आपको कुछ भी असंतोष हो जाए आप मंदिर छोड़ देंगे, गुरु छोड़ देंगे, आप नाम छोड़ देंगे, क्योंकि आप असंतोष है। इसलिए देहाभिमान गोलित करने के लिए ये साधना है, देहाभिमान को गोलित करने के लिए क्या करना है, गुरु का आश्रय लेना है। अगर देहाभिमान बढ़ रहे तो आपको सावधान होने से गुरु से जाकर कहना चाहिए कि गुरु महाराज हमारे ये स्थिति है, तो गुरु के उपदेश के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, कि देहाभिमान गलित होने से आपका तप छीन हो जाएगा, देहाभिमान अगर बढ़ता रहे आपका तप छीन हो जाएगा, आपका संतोष को प्राप्त नहीं, आप जलते रहेंगे। अगर देहाभिमान गलित हो जाए, आप कोई अपमान करे कोई कुछ भी करे आपका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, देहाभिमान गोलित करने के लिए साधना है। ये हरिनाम कर रहे शुद्ध देहाभिमान के, शरीर संसार के प्रति जो आसक्ति है, जो राग देश है, इसको मिटाने के लिए ये साधना है। और कुछ भगवान साक्षात खड़े हैं, हम देख नहीं पा रहे क्योंकि हमारी कमी है, भगवान की तरफ कुछ कमी नहीं है दर्शन देने का, हमारी तरफ कमी है। कमी क्या है, हम जड़ जागतिक रूप रस गंध शब्द स्पर्श के प्रति आसक्त है। हाँ, इसको मिटाने के एकदम धजिया उड़ा देना चाहिए। हाँ, कि इसको मुझे चाहिए ही नहीं, संसार से आप कुछ भी चाहेंगे आपको कुछ मिलेगा, मिले ना मिले भी संदेह है, किंतु अगर नहीं चाहिए, अगर आपको ये अभ्यास बन जाए मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अगर आपके मन में ये ठान ले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हाँ, ये एक सिद्धांत है। तो इसीलिए आज विदुर जी आज आपने को बहुत अहो भाग्य मान रहे, आज मुझे मैत्री मुनि जैसे गुरु मिल गया, आज मुझे कितना अच्छा शब्द सुनाया, आज मुझे लग रहा है कि मुझे हरि प्राप्त हो गया। हाँ, एक कथा अगर आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद में, द्वादश स्कंद में जाकर परीक्षित महाराज भी कहे कि प्रभु हे सुखदेव गोस्वामी, हे प्रभु आज मुझे हरि प्राप्त हो गया, क्योंकि आज मुझे भगवान की कथा सुनने को मिला, मतलब आज मुझे साक्षात प्रभु का दर्शन हो रहा है। हाँ, तो आज इसलिए दया सर्वभूतेषु संतुष्ट जेन केनवा इंद्रिय उपशांता, इंद्रिय जो विषय की ओर जा रहे हैं इसको वहां से रोकना। हाँ, ये तीन चीज साधन बताया। अगर कोई इस प्रकार से कोई सुंदर सुंदर बातें सुनाता रहे आपको, क्यों जो हृदय जो कठिनता है, जो तम जो बसा हुआ है, जो अंधकार में है, वो क्यों नहीं पिघलेगा, क्यों नहीं प्रकाश डालेगा? तो इसलिए हमें से गुरु के प्रति कृतज्ञता हम लोग को रखना चाहिए। गुरु के प्रति कृतज्ञता रखने से क्या होगा, अगर आप सोचेंगे अरे गुरुदेव आगे पहले जैसे प्रवचन करते आज उसे प्रवचन नहीं करते हैं, हाँ, आज उस तरह आनंद नहीं देते हैं, हाँ, जैसे गुरुदेव नृत्य करते थे, जिस तरह गाते थे, आज स्वास्थ्य खराब होने के कारण उस प्रकार से आनंद दे नहीं पा रहे, मतलब आप विशेष कोई मने महत्व नहीं देते। अगर गुण को देखकर अगर गुरु स्वीकार किया जाए वो नीचे चला जाएगा, गुण को देखकर, गुण को कभी नहीं, गुण माने संसार, संसार को कभी नहीं देखना, देखा कि हमारे गुरु महाराज हम साक्षात श्री हरि हमारे लिए प्रकट है, ये निरंतर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि नहीं पहले जैसे गुरु थे आज ऐसे गुरु नहीं है, तो आप चूक गए, आप वहीं पे वहीं रह जाएंगे, आगे बिल्कुल पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए हमें से निरंतर गुरु के प्रति कृतज्ञता रहना चाहिए, गुरु साक्षात स्वरूप श्री हरि ही है, साक्षात हरित्तेन समस्त शास्त्र, साक्षात हरि ही सभी शास्त्र में गुरु को कहा गया है। तो इसलिए क्या करना है, गुरु के प्रति कृतज्ञता, हमेशा हर क्षण हर मंत्र हर शब्दों में गुरु का छवि हो तो आप देखना कितना जल्दी आप आगे पहुंच जाएंगे। हर क्षण अगर गुरु का स्मृति, गुरु का मतलब उपदेश आदेश अगर आपको याद हो, आप देखना खूब कम दिन में, ज्यादा दिन नहीं लगेगा, आप हमेशा कामिनी जो हमारा बाधक है, भक्ति में जो बाधा है, वो आप आसानी से पार हो जाएंगे। पार होने का मतलब रुकावट के कारण आज मुझे दर्शन नहीं हो रहा है, तो वही लिख रहा है। फिर क्या होगा, अपहत सकल एसना, अपहत सभी प्रकार के एसना चला जाएगा। एसना की कामिनी, कांचन और कीर्ति, ये तीन प्रकार जो रुकावट है ये चली जाएगी। और क्या होगा, प्रविद्ध भाव, यहां भी लिखे प्रविद्ध भाव, हाँ प्रविद्ध, अपहत सकल एसना अमल आत्मा, हाँ एधित भावन उपहूत निज जन बस, प्रभु उस समय उसको अपने जन मानेंगे। जिस समय आपकी कामिनी कांचन कीर्ति हृदय से चला जाएगा, उस समय प्रभु अपने को प्रभु अपना मानेंगे, ये अपना है। उस समय आप जैसे पुकारेंगे, हे प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए, साक्षात प्रभु उस समय आपके सामने खड़े हो जाएंगे। हाँ अमल, क्योंकि अमल आत्मा। तो फिर इसका कोई उदाहरण है, ऐसे कोई जैसे हृदय से कामिनी कांचन कीर्ति हट गया, आप वो दर्शन दिया, हमारे षट गोस्वामी आप देख लीजिए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हाँ जो षट गोस्वामी साक्षात प्रभु खेलते थे, आज वही प्रभु है। आज किसी प्रकार कोई मतलब आदान प्रदान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, कि हमारे अंदर कुछ कमी है इसलिए नहीं हो पा रहे। किंतु ऐसे ही वही राधा गोविंद देव, वही मदन मोहन जी, वही गोपीनाथ जी, वही सब विग्रह आज भी प्रकट है, किंतु आज कुछ स्पर्श मतलब कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। इसका कारण हमारी तरफ से कमी है। हाँ इसलिए हमेशा गुरु के प्रति, आज विदुर जी इसी के विशेष स्तुति कर रहे हैं, प्रभु आपकी कृपा से मुझे आज इस संसार से पार होने का सुयोग मिला, अगर आप इस प्रकार से ज्ञान प्रदान नहीं करते तो आज मुझे वो तत्व वो जो रस नहीं मिल पाता। तो इसलिए हम लोग को सबसे आज गुरु पूर्णिमा की तिथि के अवसर पर जो गुरु महाराज ने जो उपदेश दिया, जो नियम दिया, जो उपासना दी, इसको अक्षर से पालन करें। किसी प्रकार से जैसे एक दिन 25 तारीख को जब महाराज जी के व्यास पूजा था राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी के, तो महाराज जी कुछ प्रवचन कर रहे थे 12 बजे, मैं सोचा कुछ प्रवचन FM से सुन रहा था, तो महाराज जी कहे कि भोजन से पहले सोलमाला हो जाना चाहिए, भोजन से पहले सोलमाला हो जाना चाहिए। हाँ अगर सोलमाला ना हो तो भोजन को रोक देना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा इससे कहने का क्या तात्पर्य है, भाई भोजन करके भी सोलमाला कर सकते, हाँ भोजन से पहले सोलमाला करने की क्या कहना है। इसका अर्थ ये है, तप पूर्वक जो जप होता है उसमें अपने आप मन भगवान में लग जाता है। तप पूर्वक जप एक भोग पूर्वक जप, एक सुबह सुबह मैंने सब कुछ मिलता रहे, जूस पानी, उसके बाद नाश्ता, उसके बाद 9 बजे, फिर 10 बजे, फिर इस प्रसाद पाते पाते अगर भजन करेंगे तो भजन लगेगा नहीं, बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए तप पूर्वक जप करने से मन मन बहुत जल्दी, तप मतलब तप तीन प्रकार के, कायिक तप, मानसिक तप और वाचिक तप। हाँ इस तप पूर्वक अगर, इसलिए ऋषभ देव ने कहा तपो दिव्यम पुत्र का जन सत्तम शुद्धिर जस्मात ब्रह्म सुखम तुम अनंतम, सत्य की अंतकरण की निर्मलता के लिए आपको तप करना पड़ेगा। हाँ जिससे जस्मात सत्तम शुद्धिर, जिससे अंतकरण की शुद्धि होती है, हाँ वो क्या करना है, आपको तप करना पड़ेगा। हाँ तप क्या नहीं, कुछ नियम, जो रोगी है जो शरीर अस्वस्थ है उसके लिए कोई विशेष नियम नहीं, क्योंकि शरीर ग्रस्त ठीक नहीं चल रहा है, थोड़ा मोड़ा करके तप के बेसिक आधार पर चलना चाहिए। हम लोग राग में है, हम लोग अनुराग में जाना चाहते हैं, तो बीच की जो रास्ता है वैराग्य है। हम लोग राग शरीर संसार के प्रति राग है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के प्रति आसक्ति है, इसको मिटाने के लिए, इसको मिटाकर वहां पहुंचने के लिए बीच की जो रास्ता है ये क्या है, ये वैराग्य है। कथा सुनकर अगर वैराग्य ना आए तो बहुत बड़े घाटा है। हाँ मैंने कम से कम हम लोग ये धारणा, हम लोग ये शिक्षा लेनी है कि संसार से धीरे धीरे से मन को हटाना है, संसार से अगर मन इसी तरह रचे पचे रहेंगे तो सीधा नरक की गति होगी। हाँ, इसलिए संसार से कभी कभी अलग से एकांत में एक घंटा दो घंटा के लिए अभ्यास करना चाहिए कि नहीं, मुझे संसार में रहना नहीं, मैं एक घंटा जाके कहीं एकांत में प्रभु का चिंतन करेंगे। इस प्रकार से जब आप अभ्यास करेंगे तो अब अभ्यास पक्का हो जाएगा। अगर आप नहीं सोचे हलवा लाड्डू पूरी खाते खाते भजन करेंगे तो भजन पक्का नहीं होगा। अनिमित्ता भगवती भक्ति सिद्धिर गरीयसी। जब आप वैराग्य पूर्वक भजन नहीं करेंगे मन लगेगा नहीं। मन जो अपना आप लगना है, एक साधना की तरफ लगना है, साधना के बल पर लगाना है, और एक अपने आप लगाना है। दोनों में अंतर है। एक साधना के बल पर लगाना है, साधना कर रहे तो मन कभी लग सकते हैं। अगर आप तप पूर्वक साधना करेंगे तो अपना आप मन लग जाएगा। तो इसी के लिए महाराज जी कहे कि तप पूर्वक भजन करने से मन आसानी से भगवान में लग जाएगा। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि अगर हम चातुर्मास से व्रत चल रहे हैं, थोड़ा सा नियम ले ले कि नहीं, मुझे थोड़ा हविष अन्न पाना है, बेसी तेल मिर्चा मिसली नहीं खाना है, थोड़ा सा साधना के प्रति ध्यान देना है। कभी भी देखिए आज देश की स्थिति क्या है, सिर के मौत पर मतलब मौत मडरा रहा है, मतलब किसी समय शरीर की नष्ट हो सकती नष्ट हो सकता है, मतलब कि कोई भरोसा नहीं। आज मैं यहाँ प्रवचन कर यहाँ से वहां तक तो जाने से कोई भरोसा नहीं कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे अगले क्षण। तो इसलिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि मुझे किसी भी क्षण हो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, इसके लिए मुझे हरिनाम के आश्रय स्वीकार करना है। तो श्रील प्रभुपाद जी आज लिखते कि आज श्लोक का ये भाव है, तो इसलिए संत महापुरुषों के आशीर्वाद कृपा की बहुत जरूरत है। अगर आप पढ़ेंगे ध्रुव जी की यही बात है थी कि हे प्रभु अपने भक्तों का दर्शन करा दे। प्रहलाद जी भी यही शब्द कहे, प्रभु अपने निष्किंचन भक्तों का निष्किंचनानम मति स्तवदु कर्वांग्रिम जदर्थ मोहसम पाद रज अभिषेकम अभिषेकम निष्किंचनानम न वृणीत जावत। जब तक निष्किंचन भक्तों की कृपा ना हो तब तक आपके प्रभु परम पद की प्राप्ति करना असंभव नहीं है। इसलिए भगवान के भक्तों से हमें से मंदिर आने से ये भावना रखनी चाहिए कि भगवान का संतों का दर्शन हो जाएगा। भगवान को मैं जानते नहीं, भगवान का ठीक दर्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा कोई ठीक नहीं है, किंतु यहाँ बहुत प्रेमी भक्त है जिसका क्षण क्षण में भगवान का दर्शन हो रहा है, ऐसे महापुरुष का हवा मुझ पर लग जाएगा। इसी लालसा से मंदिर के आना चाहिए कि यहाँ भगवान के दर्शन के लिए महान महान संत यहाँ अलग समय आते हैं और दर्शन करके चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से इस भावना को लेकर कि मंगलारती आना है इसलिए कि भगवान के भक्तों को प्यारे भक्तों का दर्शन हो जाए। हाँ, इस लालसा से कि उनके हवा हमारे शरीर में लग जाए तो हम कृतकृत हो जाएंगे। आज विदुर जी आज उसी भक्तों की महिमा गा रहे हैं कि हे प्रभु आपने जो मुझे ज्ञान दिया, ये ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं है, ये बहुत हमारे लिए बहुत है कि आज मैं तमस पार सो अयम अद्य महाजोगिन भवता करुणात्मना। हे प्रभु आप करुणा करके हैं, आपने कितना दयालु करुणात्मना हाँ भवता सो अयम अद्य दर्शित दर्शित मतलब हरि दर्शित, हरि को मैं प्राप्त कर लिया। दर्शित मतलब ओ हरि जो प्राप्त करने मतलब करना संभव नहीं, ओ हरि को मैंने प्राप्त कर लिया। कैसे कर लिया? करुणात्मना, करुणात्मना आपकी करुणा से आपकी दया से मैं ओ प्रभु को प्राप्त कर लिया। ओ कैसे कर लिया? तमस पार जत्र अकिंचन गो हरि ही। ओ हरि को जो प्राप्त करना आसान नहीं है, ओ हरि को कौन प्राप्त करता है? जो तमस पार, तमस मतलब अंधकार से जो पार हो जाता है, जो संसार चक्र से जो पार हो जाता है वो हरि को दर्शन कर लेते, अथवा हरि जो अकिंचन भक्त है उसको प्रभु दर्शन देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं टीका, देखें क्या लिखे इसमें, बहुत सुंदर टीका भी दी इसका। देखो 29 का टीका सुना, एक अच्छा लिखते हैं। सो अयम भगवत भक्त्या विद्यात्मक तमसा तमस पार तमस अविद्या अविद्या कार्यस्य अहंत ममता महात्माकस्य सर्व दुख कारणस्य पारो निवर्तक भवता मह्यम दर्शितहम्। इसका अर्थ ये है कि हे प्रभु जे मैं अहमता ममता में जुड़े हुए थे, जो युक्त थे, आज मुझे उस संसार चक्र से संसार से मुझे पार कर दिए। हाँ, आपकी कृपा से मुझे पार हो गया। दोषित हम कृतार्थ, मैं कृतार्थ हो गया। আপনি কৃতার্থ মান না, কিন্তু মুঝে বহুত মিলা। এই যে হরিনাম সাধারণ বস্তু নেই, আমি ইসো বহুত খেলোড়া মতলব খেলোনা জেসে লেতে। আগর আপ ইসো গম্ভীরতা সে স্বীকার করি, আপকো বহুত আসান সে বহুত জলদি আপকো বহুত কুছ দর্শন হতে রহেগা। হ্যাঁ, আর এই হরিনাম তো এই তো মানে যে চিজ আসানি সে মিল যাতে না, উসকা কদর নেই হতা হয়। আর যে বহুত সংঘর্ষ করকে যে মিলতা হয় উস পর বহুত নজর। আরে সোনা দানা দেখ না কতনা তেজোরি মে রাখতে, কেসে রাখতে, এসে জেসে রাখতে রাস্তা পে কবি নেই। ইসি প্রকার হরিনাম উসে না জানি কিতনে মহত্বপূর্ণ হ্যায়, ইসকো আদর সে হৃদয় সে হে প্রভু মে লেনে কে যোগ্য নহি হো, আপ কৃপা করকে হামারে জিভা পর উদিত হো। হ্যাঁ, নিরন্তর প্রভু কৃপা কে প্রতি যাচনা করনা, হে প্রভু আপ হামারে জিভা পর আবির্ভূত হো। তো প্রভু যাকর উস ভক্ত কে প্রার্থনা সে উদিত হো যাতে, আপ দেখনা কতনা উস সময় রস প্রাপ্ত হোগা। উসি কো লেখ রে কি মে অহমতা মমতা সে যুক্ত থে, আজ মুঝে উহা সে নিকাল করকে আজ মুঝে প্রভু কা দর্শন করা দিয়া। তো ফির লিখতে, আচ্ছা দেখি কতনা আচ্ছা প্রশ্ন উঠায়া। আচ্ছা ভাই কথম কৃতার্থ, আপনি কহা রে কি আপ কৃতার্থ হোগে, কেসে কৃতার্থ হোগে না কথম ইতি আসঙ্গ দুর্লভ ফল প্রাপ্তি, দুর্লভ ফল কো প্রাপ্ত হোগে। দুর্লভ ফল প্রাপ্তি ইত্যাহ যত্র তিজস্মিন সতি অকিঞ্চনক অনন্য ভক্ত প্রাপ্য হরিহি প্রাপ্যতে, যো অকিঞ্চন ভক্ত যোসকো জিস হরি কো প্রাপ্ত করতে ও হরি মুঝে প্রাপ্ত হবে। অকিঞ্চনক হরি প্রাপ্য ও হরি প্রাপ্যতে, ও হরি মুঝে আজ প্রাপ্ত হো গিয়া। হ্যাঁ, এ মহাফল আমার লিয়ে তো প্রাপ্যতে দুর্লভমপি ময়া ভবত কৃপয়া অনায় আসেনেব লব্ধমিতি সূচয়ন আহ। আর এই দুর্লভ কেউ কি অনায়াসে সরলতা সে আপকি কৃপা সে এ বস্তু প্রাপ্ত হওয়া সূচন আহ, কিউকি আপ করুণাময় করুণা করুণাত্মনা ইতি করুণাপূর্ণ চিত্তম ইত্যর্থ। জিস প্রকার পিতুহু পিতা জিস প্রকার সন্তানকে প্রতি দয়া করকে কুছ দে দেতে, ইস প্রকার আপ মুঝে এ বস্তু দে দিয়া। ফির এক শ্লোক এক শব্দ দিয়া মহাযোগিন, ইস শ্লোক মে আয়া মহাযোগিন, যোগিন শব্দ কা অর্থ লিখ রহে এবং তত্ত্ব উপদেশেন কৃতার্থ কৃতার্থীকরণে ভাবাদৃশম যোগিনামেব সামর্থ্যম অস্তি। হ্যাঁ, তত্ত্ব উপদেশকে দ্বারা তত্ত্ব উপদেশেন কৃতার্থীকরণে ভাবাদৃশম, আপকে জেসে তত্ত্ব উপদেশকে দ্বারা আপনি ক্যা কিয়া কৃতার্থী কিয়া। হ্যাঁ, তত্ত্ব উপদেশেন কৃতার্থীকরণে ভাবাদৃশম যোগিনাম এব সামর্থ্য, যোগী কা সামর্থ্য হ্যায়, কই যোগী হ্যায় ও কৃতার্থ কর দেতে আপকে উপদেশ কে দ্বারা কিসি জীব কো। আর ইহা বিদুর জি মৈত্র মুনিকে মহাযোগী কহ রে, তো মহাযোগী মতলব ও ক্যা নেই কর সকতে, যোগী এক সাধারণ যোগী যদি কিসি জীব কো সংসার সে উবার সকতে হ্যায় উদ্ধার কর সকতে, আপ তো মহাযোগী হ্যায়। হে মহাযোগিন, মহা কথা কা অর্থ এ হ্যায় কি আপ যোগী সে বড়কর হ্যায়। হ্যাঁ, ইসি কা অর্থ লে রে। তো এক ছোটা সা কথা শোনা কর দো মিনিট মে, কিউকি জো এক এ থা এক বাচ্চা লড়কা থা উনকা নাম থা ফরিদ, ক্যা নাম থা ফরিদ, মা থি হিন্দু বাপ থা মুসলমান, বাপ থা মুসলমান। তো ফরিদ বচপন সে হি মতলব মিঠাস কে প্রতি বহুত লোভী থে, মিঠাস কে প্রতি বহুত লোভী থে, মা মুঝে মিঠাস চাইয়ে। তো মা কে বেটা রোজ রোজ কাহা মিঠাস মিলেগা। হ্যাঁ, তো মা নে কাহা কে বেটা তুই রাম নাম জপ কর, হ্যাঁ রাম নাম জপ করতে করতে তুঝে রামজি আকর তুঝে মিঠাস দে যায়েগা। তো বচ্চা কে বিশ্বাস হো গিয়া কি মিঠাস মিল যায়েগা, তো আসন মে বেট কর রোজ নাম জপ করতে থে। মা ক্যা করতে থি পিছে সে আকর এক মিঠাস কুছ রাখ কে চলি যাতি থি। তো জব বচ্চা আখ খুলতা থা দেখে কি মিঠাস হ্যায়, মামা মুঝে মিঠাস মিল গিয়া। হ্যাঁ, উনকা বিশ্বাস ক্যা হ্যায়, রামজি আকর মুঝে মিঠাস দে যাতে। বাচ্চা ইস প্রকার সে রোজ মিঠাস কে লোভ সে রোজ জপ করনে লাগে। হ্যাঁ, ফির ধীরে ধীরে সে একদিন এক এক ঘন্টা দো দো ঘন্টা তিন তিন ঘন্টা নাম করনে লাগে বহুত, কি কি লোভ কে কারণ, কই আসক্তি কে কারণ নেই কি প্রভু প্রাপ্তি হয়ে যায়, এই লালসা নেই, লালসা কি মুঝে মিঠাস প্রাপ্ত হয়ে যায়। তো এইস প্রকার নাম জপ করতে করতে একদিন কহে কি হে সুবহ সে লেকর শাম তক প্রভু কা নাম স্মরণ কর রে, তো মা মুঝে মিঠাস রাখ, যেতনা বড় বড় নাম মতলব বড় বড় লাড্ডু রাখ কে চলে যাতে থে, तो एक दिन सुबह से लेकर शाम तक बैठे नाम किए, फिर माँ के पास गए। माँ कहे कि बेटा तुझे मिठास नहीं मिला? माँ मुझे मिठास मिला, किंतु नाम में जो मिठास है वो मिठास इसमें नहीं है। तो मुझे माँ आज्ञा दीजिए, मैं वन में जाकर निरंतर प्रभु का स्मरण करेंगे। तो बेटा बहुत अच्छा उपाय है, आप चले जाए। माँ थी बहुत भक्तिमती थी, माँ ने आज्ञा दे दी। तो इस प्रकार से अगर हम नाम जप करते रहेंगे बेकुल, तो कुछ भले लोभ के कारण हो, भले लोभ हो, पहले लोभ जागतिक विषय प्रति लोभ रहेगा, किंतु आपको हमेशा ही दृष्टा बन के रहना है। ये बेईमान आया, ये हमको नष्ट करेगा, हमारा भजन साधन खाएगा, नष्ट कर देगा। तो इसे हमेशा ध्यान रखना कि अगर वो आ भी जाए, हाँ धन संपत्ति आ भी जाए, उसको निकाल देना, किसी संत महापुरुष की सेवा में लग जाए। हाँ अगर इस प्रकार से अगर हम धन को भगवान के और भगवान के भक्तों की सेवा में लगा दे तो धन की सार्थकता, अगर वो अपने ससुख वासना के लिए लगाए तो हानिकर। ससुख वासना के हमेशा ध्यान रखे, और तत्सुख वासना मतलब प्रभु की सुख के लिए। गोपीजन आज महान क्यों, हर क्षण प्रभु के सुख के लिए चिंता करती थी। भावो सवेन भजतम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेनुम अहम स्मरामे, मैं उस राधिका के चरण स्मरण करता हूँ जो भावोत्सव के द्वारा प्रेम पूर्वक जो प्रभु के सुख के लिए जिन्होंने भजन किया, प्रभु का स्मरण किया, आज मैं उस राधारानी के चरणों का स्मरण करता हूँ। हाँ तो इस प्रकार से आज विशेष तिथि है, क्या तिथि, गुरु पूर्णिमा की तिथि के अवसर पर आज हम व्यास पूर्णिमा, मतलब सभी जगत के लोग आज गुरु पूर्णिमा मनाएंगे। तो आज हमारे लिए गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी है। हाँ आज प्रभुपाद जी नहीं होते, हाँ देखिए वृद्ध वयस आज 70 वर्ष की अवस्था में विदेश में जाकर जो लोग बिल्कुल बेहोश पड़े रहते थे, हाँ आज उन लोग किस प्रकार से कृष्ण नाम में लगाया। और आज वास्तविक प्रभुपाद नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं बैठ पाते, आज यहाँ बैठ के प्रवचन नहीं करते। हाँ प्रभुपाद के कारण आज मैं कृष्ण भावना में तेरे जो रस है आज मुझे प्राप्त हो रहा है। इसका मूल कारण क्या है, शिल प्रभुपाद। देखिए वृद्धावस्था में जाकर क्या क्या नहीं किया, कितना कष्ट सहन किया, आज उस शिल प्रभुपाद के लिए जैसे तैसे मैंने निरंतर प्रभु का ही स्मरण करे कि हे प्रभुपाद आज अगर आप नहीं होते आज हमें नाम रस मुझे नहीं मिल पाता होता। तो इसलिए प्रभुपाद की कृतज्ञता, कभी भी प्रभुपाद जी के जो भी कुछ मिला आज प्रभुपाद जी को अर्पण कर। और हमेशा ही गुरु पूजा मतलब आत्मसमर्पण, समर्पण की भावना कि प्रभुपाद जी ने जो नियम दिया, जो नाम जप की विधि दी, इसको अक्षरशः पालन करें, यही सबसे बड़ी गुरु पूजा है। अगर गुरु पूजा में बहुत कुछ भेंट चढ़ाया, बहुत कुछ दिया, प्रभुपाद जी के आदेश का पालन नहीं किया तो वो यथार्थ शिष्य नहीं है, वो ऐसे सो कॉल्ड शिष्य। हाँ अगर प्रभुपाद जी के जो नियम दिया इसको अक्षरशः पालन करें, यही सबसे बड़ी गुरु पूजा है। तो आज प्रभुपाद जी से यही प्रार्थना करें, चातुर्मास में कुछ नियम रखें, कुछ संतों के गुरु के प्रति कृतज्ञता रखें, यही आज प्रवचन का मुख्य सार वस्तु। शिल प्रभुपाद की समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि गौर।